और अगर कॉलर्स हमें बात करना चाहें हमारे साथ तो वो भी हमें फोन कर सकते हैं। तो आइए खबरों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है और 16 से 20 अप्रैल के दरमियान कोई जारहाना कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बैन अक्वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसका नोटिस ले और भारत को ऐसी किसी हरकत से रोक दे। पाकिस्तान के वजीर खारजा के इस दावे की आजाद जराये से तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी और न ही भारत ने ताहाल इस पर कोई तबसरा किया है। तो मुल्तान सर्किट हाउस में इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा ने कहा कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में पुलवामा जैसा कोई और वाकया हो सकता है और भारत इसका जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। उनके बकौल उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ गैर मुल्की सफीरों को खदशात से आगाह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस खबर की भारत की तरफ से कोई तरदीद नहीं, जिस पर पाकिस्तान को तश्वीश है। बरतानवी पुलिस अफसरान की टीम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की नफरत अंगेज तकरीर की तहकीकात के सिलसिले में इस्लामाबाद पहुंची है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से अली फुरकान अपनी रिपोर्ट में।
सिक्योरिटी हुकाम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त की नफरत अंगेज तकरीर के हवाले से पेशरफ्त सामने आई है और बरतानवी महकमा इंसदादे दहशतगर्दी और कमांड मेट्रोपॉलिटन पुलिस की टीम पाकिस्तान पहुंची है। हुकाम का कहना है कि बरतानवी तहकीकाती टीम को इस केस से मुतलिक 6 गवाहान और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद करवाए जाएंगे। बरतानवी पुलिस के दौरे का मकसद इस बात का तयन करना है कि क्या बानी MQM की 22 अगस्त की तकरीर नफरत पर मबनी थी या नहीं। ख्याल रहे कि 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन की जनब से कराची में अपनी जमात के कारकुनान से एक टेलीफोनिक खताब में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए गए थे। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस तकरीर को नफरत अंगेज करार देते हुए एक रेफरेंस बरतानवी हुकूमत को भिजवाया था और लंदन में मुकीम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इस जिमन में वफाकी तहकीकती एजेंसी ने मुकदमा से मुतलक गवाहान और तफ्तीशी अफसरान को कराची से इस्लामाबाद बुलवा लिया है और पीर से बरतानवी टीम बयानात रिकॉर्ड करना शुरू करेगी। मुकामी जराये अब्लाग के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमात के तफ्तीशी अफसर ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि बरतानवी पुलिस MQM बानी के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रही है और ये कि इन मुकदमात का अदालती रिकॉर्ड और तफसीलात दरकार हैं। साबिक सेक्रेटरी दाखला तस्नीम नूरानी का मानना है कि तहकीकाती टीम का इस्लामाबाद आना अहम पेशरफ्त है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि इससे कबल बरतानिया ने पाकिस्तान की शिकायत पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कभी ठोस इकदाम नहीं किए और न ही की जाने वाली अपनी तहकीकात को आम किया गया।
अगर वो साबित कर दें और इससे वो कर दें कि वाकई जो कनेक्शन है उसका और पाकिस्तान में टेररिज्म जो है और पाकिस्तान में जो उनकी तरफ से हेट्रेड है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं इनसिक्योरिटी और मतलब उससे उसकी नेशनैलिटी भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे उसको पाकिस्तान भी भेजा जा सकता है।
MQM पाकिस्तान के सेनेटर मियां अतीक कहते हैं कि 22 अगस्त जैसे बयानात माजी में मुतद्दद सियासी रहनुमा देते आए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक हुक्मरानों की ख्वाहिश पर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा।
हमारी UK के साथ एक ट्रीटी है, उसके मुताबिक हमें चलना है। अब वो जो मौजूदा हुकूमत वक्त है या कोई भी हुकूमत हो, उनकी ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं होगा। इस जो हमारी हुकूमत का एक बड़े अरसे से चल रहा है कि अल्ताफ हुसैन भाई को यहाँ लाया जाए, क्या वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इसका फैसला हुकूमत बरतानिया ने और अपने कानून के मुताबिक हुकूमत बरतानिया ने करना है।
याद रहे कि MQM के पाकिस्तान में मौजूद रहनुमाओं ने 22 अगस्त के अपनी पार्टी कायद की तकरीर से लातौलिकी का ऐलान किया था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अल्ताफ हुसैन की तकरीर और अपनी जमात के लोगों को तशद्दुद और बदनमनी पर उकसाने के शवाहिद भी बरतानवी टीम को फराहम किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि MQM के कायद ने न सिर्फ बरतानवी बल्कि बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इस कानूनी कार्रवाई के नतीजे में उनकी बरतानवी शहरियत खत्म करके पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। अली फुरकान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के इस बयान पर कि मोदी हुकूमत इंतखाबात को जहन में रखकर जंगी जुनून पैदा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन पर इल्जाम आयद किया कि वो पाकिस्तान के हाथों में खेल रही है और दहशतगर्दों के हाथ मजबूत कर रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अफगानिस्तान में हफ्ते के रोज कई दहशतगर्द हमले हुए जिनमें कम से कम 7 पुलिस एहलकार और 3 शहरी हलाक हो गए। एहलकारों ने बताया कि मशरकी सूबे गजनी में तालिबान सरकशों ने सिक्योरिटी की चौकियों पर हमले किए जिनमें पुलिस के 3 एहलकार हलाक हो गए। सूबाई पुलिस के मुताबिक पुलिस के तर्जुमान अहमद खान सीरत ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि तालिबान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آب و ہوا کی تبدیلی زندگیوں اور 19 ملین بچوں یا ملک میں 18 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کے ایک تہائی کے مستقبل کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ جنیوا سے یونیسیف کی رپورٹ کی تفصیلات پر وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اس رپورٹ میں ان لاکھوں بچوں کے مخدوش مستقبل کی پیش گوئی کی گئی ہے جو ملک کے شمال میں بنگلہ دیش کے سیلاب اور خشک سالی کے خطرے سے دوچار نشیبی علاقوں اور خلیج بنگال کے ساتھ واقع سیلاب زدہ ساحلی پٹی میں رہتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں امکانی طور پر سیلابوں، سمندری طوفانوں اور دوسرے ماحولیاتی سانحوں کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ خطرے کے شکار 19.4 ملین بچوں میں لگ بھگ 5 لاکھ روہنگیا پناہ گزین بچے شامل ہیں۔ وہ اور ان کے والدین میانمار میں تشدد اور اذیت رسانی سے بچنے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش کے کاکس بازار کے علاقے میں پہنچے تھے۔ وہ بانس اور پلاسٹک کی کمزور پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں جو آب و ہوا کے کسی سانحے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مصنف سائمن انگرام نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے بچوں کی زندگیاں براہ راست متاثر ہوں گی، خاص طور پر غریب اور ان بچوں کی جنہیں اس کے تباہ کن اثرات سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے متاثرہ 60 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ بہت سے وہ بچے جو ڈھاکہ اور دوسرے بڑے شہروں میں پہنچے ہیں وہ اپنی گزر اوقات کا بندوبست خود کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے الفاظ،
Many children being pushed into very hazardous forms of child labor. Many girls who end up being pushed into taking early marriages because their families
can no longer afford مشکل قسم کی چائلڈ لیبر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو کم عمری میں شادی پر مجبور کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کے خاندان اب ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شہروں میں بڑھتی ہوئی جنسی تجارت کا ہدف بن رہی ہیں، وہ لڑکیاں جن کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مصنف سائمن انگرام کے۔ آئندہ آنے والے بے پناہ مسائل کے باوجود انگرام کا کہنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ایک دورے کے دوران جن بچوں سے ملے وہ بہت سخت جان ہیں اور وہ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نوجوان سرگرم کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ تبدیلی کے ایجنٹ بن رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ ملک کے جنوب میں موجود ایک مخصوص نیٹ ورک کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں جہاں 1500 کے لگ بھگ سرگرم کارکن ہیں جو کمیونٹیز میں جا کر لوگوں کو ان خطرات کے بارے میں سمجھانے میں مدد کر رہے ہیں جو انہیں لاحق ہیں، اور بنیادی طور پر انہیں مستقبل میں آب و ہوا کے کسی ممکنہ سانحے کے لیے تیار ہونے میں مدد کر رہے ہیں۔ انگرام کہتے ہیں کہ اس قسم کے کام میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جس پذیرائی کا حقدار ہے اسے وہ مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش مجموعی طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے کیے جانے والے متعدد اقدامات پر عمل درآمد میں حکومت کی مدد کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچے کسی بھی رد عمل کا مرکز ہونے چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے رابرٹ مولر کی رپورٹ کا مطالعہ نہیں کیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اس رپورٹ کا جائزہ لینے کا پورا حق ہے، لیکن ان کے بقول تحال انہوں نے اسے نہیں پڑھا۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے نامزد رابرٹ مولر کی مرتب کردہ رپورٹ میں امریکی صدارتی انتخابات میں روس کے اثر انداز ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ رپورٹ میں 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخابی مہم میں روسی حکومت کے کردار کی بھی چھان بین کی گئی ہے۔ رابرٹ مولر خصوصی کونسل نے 22 مارچ کو لگ بھگ 2 سال جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد گزشتہ ماہ اپنی حتمی رپورٹ اٹارنی جنرل کو پیش کر دی تھی۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم برڈ کے مطابق وہ رواں ماہ کے وسط میں امریکی انتخابات میں روس کے کردار سے متعلق اس رپورٹ کے مندرجات عام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ یہ اٹارنی جنرل کی ثواب دید ہے کہ وہ کب یہ رپورٹ عام کرتے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ وہ ایسی معلومات عام نہیں کر سکتے جس میں خفیہ اداروں کا طریقہ کار کا ذکر ہو اور قانون انہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایوان میں ڈیموکریٹس نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اگر رپورٹ میں شامل حساس موضوعات انہیں نہیں دی گئی تو وہ اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی اس وقت چیری بلاسم کے سالانہ میلے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ نہ صرف سیاح بلکہ مقامی باشندے دونوں ہی مل کر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، خاص طور پر آج کے دن جبکہ ایک پیریڈ بھی جاری ہے اور موسم بہت اچھا ہے۔ آئیے آپ کو تفصیلات سنواتے ہیں یاسمین جمیل سے۔
سورج کی چمکیلی دھوپ تلے اور موسم بہار کے نسبتاً گرم درجہ حرارت میں واشنگٹن ڈی سی کے مقبول چیری بلاسم کے درخت پوری آب و تاب سے کھل چکے ہیں۔ مشیگن سے قدرت کے اس دلکش نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والی نینسی رینالڈز کہتی ہیں، یہ انتہائی مسحور کن ہے، یہ شاندار ہے، یہ آپ کو سیر زدہ کر دیتا ہے اور اس رواں تالاب کے ساتھ بیٹھنا اور صرف ریسٹ اور ریلیکس کرنا بہت دل خوش کن ہے۔ یہ الفاظ تھے مشیگن سے چیری بلاسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے واشنگٹن آنے والی ایک خاتون نینسی رینالڈز کے۔ چیری بلاسم کی یہ سالانہ آبوتاب ہے جو ان درختوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایک وجہ بن گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اشروں کا استعمال اور سمندر کے بلند ہوتے ہوئے درجے دریائے پوٹومک پر انسانوں کے بنے 107 ایکڑ کے اس آبی ذخیرے کے لیے، جہاں چیری بلاسم کے ہزاروں درخت موجود ہیں، سخت سیلابی مسائل کی وجہ بن رہی ہیں۔ نیشنل پارک سروس کے چیف شان کینلی کہتے ہیں،
A lot of areas that the cherry trees are just literally falling into the water. As you can see here, the exposed roots, the other areas where people just can't walk anymore.
جن مقامات پر چیری کے درخت ہیں ان کا بہت بڑا حصہ فی الواقع پانی میں گر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ان کی جڑیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دوسرے مقامات ایسے ہیں جہاں لوگ اب پیدل بھی نہیں چل سکتے، اور ایسا علاقہ ہے جہاں کئی برسوں میں بہت سا سمندری پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیشنل پارک سروس کے چیف شان کینلی کے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ علاقہ دن میں دو بار بلند لہروں کی زد میں آتا ہے اور پانی میں موجود مٹی کا گارا چیری کے ان درختوں کی عمر کم کر رہا ہے۔ ان کی بحالی کے پروجیکٹس پر اندازہ ہے کہ لگ بھگ $500 ملین درکار ہوں گے، اور منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ حکومت اور نجی عطیات دہندگان سے یہ رقم اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیشنل مال کے لیے قائم ٹرسٹ بھی ان درختوں کو محفوظ اور برقرار رکھنے کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی خاطر چیری بلاسم میلے میں شراکت دار بن گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ہفتے کے روز کہا کہ دوبارہ انتخاب جیتنے پر وہ مغربی کنارے کی مقبوضہ اسرائیلی بستیوں کو ضم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے اس انتخابی وعدے کے نتیجے میں فلسطینی اور عرب دنیا کی برہمی پر مبنی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے رائٹرز کو بتایا کہ کسی قسم کے اقدامات اور اعلانات کے نتیجے میں حقائق تبدیل نہیں ہوں گے، بستیوں کی تعمیر ناجائز ہے اور انہیں ہٹایا جائے گا۔ شمال مغربی شام میں اتوار کے روز کی گئی بمباری میں 13 شہری ہلاک ہو گئے۔ حکومت کے حمایتی فوجیوں نے جہادیوں کے زیر کنٹرول ادلیب کے علاقے میں مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ یہ بیان جنگ کا جائزہ لینے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی طرف سے دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ لیبیا کے وزیر اعظم فائز سراج کہتے ہیں کہ ان کی سرکاری افواج مشرقی لیبیا میں فوجی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار افواج کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنرل حفتار کے افواج کو دارالحکومت طرابلس کے مضافات میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے غسان سلامی لیبیا میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طرابلس کے اندر اور مضافات میں کئی مقامات پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان علاقوں میں کشیدگی ختم کرنا ضروری ہے تاکہ شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور سوڈان میں حکومت مخالف مظاہروں کے پس پردہ منتظمین کہتے ہیں کہ سیکیورٹی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم 5 مظاہرین کو ہلاک کر دیا۔ ہفتے کے روز ہونے والے مظاہروں میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 3 ماہ سے جاری احتجاج میں سب سے زیادہ رہی۔ یہ مظاہرین صدر عمر البشیر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ ان سوشل میڈیا کمپنیوں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کرے گا اور ان کے سربراہان کو 3 سال تک جیل کی سزا دے گا جو جلد ہی اپنی ویب سائٹوں سے شدت پسند مواد کو نہیں ہٹائیں گے۔ تفصیلات انجم ہیرگل سے سنیے۔
جمعرات کے روز پارلیمان سے منظور ہونے والا یہ قانون 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک مسلح شخص کے 2 مساجد پر حملوں کی براہ راست اسٹریمنگ کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے دوران کیے گئے ان حملوں میں 50 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ قانون منظور ہونے کے بعد آسٹریلیا کے اٹرنی جنرل کرسچن پورٹر کا کہنا تھا، اس کا انحصار حالات پر ہوگا کہ ایک مناسب اور معقول طرز عمل کیا ہے، مستعد طرز عمل کیا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی معاملہ مقدمے میں گیا تو پھر جیوری اس کا فیصلہ کرے گی۔ تاہم کرائسٹ چرچ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے میں بالکل ٹھیک طور سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا لمحہ ہوگا جب ان کے لیے یہ سمجھنا مناسب تھا کہ ان کی سائٹ پر براہ راست سٹریمنگ ہو رہی ہے اور انہیں اسے روکنا ہے. لیکن میں کہوں گا, اور میرے خیال میں ہر آسٹریلوی باشندہ اس سے اتفاق کرے گا, کہ ان کی سائٹ پر اس کا ایک گھنٹے تک موجود رہنا اور ان کی جانب سے اس پر کوئی کاروائی نہ کرنا ہی انتہائی نامعقول بات تھی. فیس بک اور یوٹیوب کی مالک گوگل جیسی کمپنیوں کے لیے ایسی تصاویر یا ویڈیو کو جن میں قتل و غارت گری یا تشدد دکھایا گیا ہو بغیر تاخیر کیے نہ ہٹانا اب ایک جرم ہوگا. کمپنیوں پر اب یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ جلد از جلد آسٹریلیا کی پولیس کو اس کی خبر دیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا, اور یہ سنڈے اسپیشل یعنی اتوار کا خصوصی پروگرام ہے. اسد حسن کے میزبان آپ کے ہوتے ہیں, ان کی جگہ آج یہ پروگرام میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پروگرام کا انداز وہی ہے جس طرح سے آپ اسے سنتے آئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر افشاں ہما. آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعلیم کے بارے میں. الف سے یہ تک اس پروگرام کا نام ہے. ڈاکٹر افشاں ہما کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر افشاں ابھی ہمارے ساتھ ہوں گی. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بہت سے مختلف جو نظام تعلیم رائج ہیں, خاص طور پر ہم بات کریں گے نصاب کے بارے میں. تو پاکستان میں بہت سے مختلف نظام تعلیم رائج ہیں, ان میں سرکاری اسکول ہیں, انگریزی اسکول ہیں, دینی مدرسے ہیں, کیڈٹ کالج ہیں, یہ سارے مختلف جو ذرائع ہیں تعلیم دینے کے. سب کے نصاب بھی الگ الگ ہیں عام طور پر, اور یوں ان مختلف نظاموں سے تعلیم مکمل کرنے والوں کی استعداد کار بھی مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. اور ملک میں ہنر مند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی جملہ ضروریات کچھ مکمل طور پر پوری نہیں ہوتی, اور اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں مقابلے کا میدان سب کے لیے یکساں رہتا بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر افشاں ہیں ہمارے ساتھ. تو ڈاکٹر افشاں ہما سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان سے بات ہماری نہیں ہو رہی. تو ہم یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے تعلیمی ماہرین مختلف طرح کی آراء اس بارے میں رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نصاب مناسب نہیں ہے, پرانا ہے, اور موجودہ دور جدید کے تقاضوں سے اس کی ہم آہنگی نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سائنس کے مضامین کی تو آپ بات ہی نہ کریں, جو تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز جیسے مضامین ہیں ان کے نصاب بھی کچھ ایسے اچھے اور تسلی بخش نہیں ہیں جیسا کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھے جانے چاہیے اور بنائے جانے چاہیے. تو اب کئی سوال ہیں اس سلسلے میں کہ یہ نصاب کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں گاہے گاہے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس مسئلے کا کوئی باقاعدہ حل تلاش نہیں کیا جا سکا. تو یہاں سے ہی ہم شروع کریں گے اور پوچھیں گے ڈاکٹر افشاں ہما سے کہ یہ سارے جو مسائل ہیں اور نصاب کے سلسلے میں جو مختلف طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں, دشواریاں آتی ہیں, تو ان کو حل کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس سلسلے میں حکومتی سطح پر کیا اقدام کیے جا رہے ہیں, اور اگر نہیں کیے جا رہے تو کیا اقدام کرنا ضروری ہے؟ یہ سبھی باتیں آج ہم انہیں سے پوچھیں گے. تو ڈاکٹر افشاں ہما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پروڈیوسر اسفر امام ہمیں بتا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما, آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے کچھ تفصیل اپنے سننے والوں کو بتا دی, اس وقت تک آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل پاکستان میں جو مختلف نوعیت کے تعلیمی ادارے مروج ہیں, جس میں سرکاری اسکول ہیں, انگریزی اسکول ہیں, دینی مدرسے, کیڈٹ کالج سبھی شامل ہیں, لیکن نصاب الگ الگ ہیں. اور بہت سارے تعلیمی ماہروں کا یہ بھی خیال ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک کے نصاب پرانے ہیں اور موجودہ دور کے تقاضوں سے وہ ہم آہنگ نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس کے مضامین کی تو آپ بات ہی نہ کیجیے, آپ تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز جیسے مضامین کی بھی اگر بات کی جائے تو ان کے نصاب بھی کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے. تو خصوصی کمیٹیاں بھی اس کے لیے تشکیل دی جاتی رہی ہیں گاہے گاہے. خود آپ کا تعلق بھی پالیسی اسٹڈیز سے ہے اور پالیسی بنانے سے بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی باقاعدہ حل ابھی تک تلاش نہیں ہو سکا؟ آپ کس طرح سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی؟
ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں کچھ جملوں کے اور ہم سویپنگ سٹیٹمنٹس سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں کوئی بھی چینج اوور نائٹ نہ تصور کی جا سکتی ہے نہ کبھی آ سکے گی. کوئی دو دہائیوں کا عرصہ بیچ میں ایسا گزرا ہے جس میں میں کہوں گی کہ کوئی میجر چینج نہیں آئی تھی کریکلم میں. تو 1980s کے بعد کوئی میجر چینج نہیں آئی تھی, اور اس کے بعد 2006 میں پہلا ریویژن کیا گیا کریکلم کا ہماری دیکھنے میں. اور اس میں کافی سارا کریکلم جو پرائمری اسکول کا تھا اس میں بھی اور جو سیکنڈری اسکول کا تھا اس میں بھی میجر ریویژنز آئی ووڈ سے کی گئیں. ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا چلا آ رہا تھا پیچھے 80s سے لے کے 2000 تک, کیونکہ کسی قسم کی کوئی میجر چینج اس کے بعد نظر نہیں آئی تھی, تو یہ فکرہ بڑا زبان زد عام ہو گیا کہ جی کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی. 2006 کے ڈاکیومنٹ اگر آپ اٹھائیں تو میں اس وقت بھی کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہی منسلک تھی تو آئی نو کہ بڑی ایکسٹینسو چینجز کی گئیں. ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ, تو جب وہاں کمپیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. ریسنٹ جو اس میں اسٹیپ ہوئے ہیں وہ بھی میں شیئر ضرور کروں گی کہ لاسٹ ایئر کوئی 12-14 میٹنگز کے بعد کلاس 1-5 کا کریکلم ایک دفعہ پھر سے پورا ریویو کیا گیا فیڈرل لیول پہ.
اچھا,
18th ترمیم کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ صوبوں میں اپنا کریکلم بنایا جا سکتا ہے, اگر وہ چاہیں تو فیڈرل کا اڈیپٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو فریم ورک سامنے رکھتے ہوئے اپنا بنا سکتے ہیں. پنجاب میں اور فیڈرل میں یہ بڑی ایکسٹینسو ایفرٹ ہوئی اور اس وقت وہ ٹیکسٹ بکس کی اسٹیج پہ ہے, ٹیکسٹ بکس بننے کی اسٹیج پہ ہے. جب تک وہ ٹیکسٹ بک اسکولوں تک نہیں پہنچتی تو نو بڈی نوز کے کریکلم ریویژن ہو چکی ہے, لیکن دیٹ واز اونلی فار کلاس 1-5.
اچھا, لیکن آپ مجھے بتائیے, ماہر تعلیم ہیں آپ اس حساب سے اور ابھی جیسا کہ بتا بھی رہی ہیں کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں, پھر عام طور پر کیا وجہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو یا ذہنی رجحان کو یا یہ سوچ ہے پاکستان کے بارے میں کہ وہاں پر نصاب تعلیم نہیں, نصاب تعلیم میں اتنی تبدیلی نہیں آتی یا تبدیلیاں نہیں آتی جیسے کہ ہونی چاہیے یا وہ جدید دنیا سے کے ساتھ وہ نہیں چل سکتا, تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتی ہیں, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
تین چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گی. میں جب بھی بات کرتی ہوں تو میں لیولز پہ بیس کر کے کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پھر سے وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ بالکل پسند نہیں آتی کہ شروع سے آخر تک ایک نہ کہا جائے. پرائمری لیول پہ جب بھی چینجز ہوئی ہیں تو پالیسی بھی چینج ہوئی ہے, ایگزامینیشن کی پالیسی بھی چینج ہوئی ہے اور سب کچھ. سیکنڈری اور پوسٹ سیکنڈری لیول کے اوپر جو ریجڈٹی رہی ہے یا جو مونوٹنی رہی ہے وہ اس چیز کی رہی ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم یا اسسمنٹ سسٹم کبھی نہیں بدلا گیا. تو کانٹینٹ میں جتنی بھی تبدیلی آئی اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں بدلے گا جب تک ہم اسسمنٹ سسٹم کو نہیں بدلیں گے. ہم اگر ٹیکسٹ بک میں کانٹینٹ چینج کر بھی دیتے ہیں تو ٹیچر پھر اس کو اسی طرح سے یاد کروانے کی یا صرف ریڈنگ رائٹنگ کی ایکٹیویٹی میں لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. جب کریکلم ریفارم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے دو تین چیزیں جڑی ہوتی ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اسسمنٹ کے طریقے بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہولسم چینج نہیں آئی ایک دفعہ بھی.
اچھا, اس کی وجہ بڑی یہ ہے, تو اس میں کیا آپ دیکھتی ہیں کہ جو اساتذہ ہیں اور ان سارے لیولز پہ پڑھا رہے ہیں پہلے ان کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو اور جو چیزیں بھی آپ نے تبدیلیاں سجیسٹ کی ہیں تجویز ہوئی ہیں ان پر پورے طور پر عمل درآمد کیا جائے؟ تو
جی پاکستان میں نا جب ہم کہتے ہیں جب ہم میری اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایک کورس ہے پاپولیشن ایجوکیشن, اور جب میں اس پہ بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں कि हमें समझ नहीं आती कि पॉपुलेशन मसला क्या खड़ा करती है. पॉपुलेशन इस तरह के प्रोसीजर्स में मसले खड़ा करती है. जब मैं कहती हूँ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक जुमला है, और जब मैं उसका प्लान बनाने बैठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लाखों की तादाद में है. क्योंकि इतनी इतनी बच्चे स्कूलों से बाहर होने के बावजूद द नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन पब्लिक स्कूल, एक एक क्लास में जो बच्चों की तादाद है
जी.
और फिर जो हमने टीचर्स भर्ती कर रखे हैं, जब आप उसका कैलेंडर बनाना शुरू करते हैं ना ट्रेनिंग का, तो पता चलता है कि अगर ये साइकिल शुरू भी किया गया जो डीएसडी ने 2005 में किया, जब 2006 के करिकुलम बन रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इसको स्टार्ट किया साथ ही. तो कैन यू बिलीव के 5 साल में एक साइकिल पूरा हुआ.
तो
ये इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि पाकिस्तान में हम जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो जितनी देर में हम प्रोसेस खत्म करते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है,
चीजें आगे चली जा चुकी होती हैं. तो इसका ये सूरत नहीं कर सकते कि इसको छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में बांध कर किया जाए, कि बांट दिया जाए कि चलो कहीं ना कहीं तो कोई बेहतर तौर पर तब्दीली आए.
अब जो ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना
जी.
मैं इस वक्त पंजाब में भी, सिंध के साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चीजों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि हम एक एक सूबे के लेवल पे चीजों को करते रहें, तो फिर वो साइकिल कंप्लीट होते होते बहुत टाइम लगता है. तो उससे ज्यादा बेहतर ये होता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टीचर्स ट्रेनिंग, कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएं और तमाम डिस्ट्रिक्ट पैरेलल शुरू कर दिया करें, तो फिर शायद ये क्विकली हो सके. और जब तक ये टेक्स्ट बुक्स स्कूलों में पहुंचे उससे पहले टीचर्स की तैयारी करवाई जाए,
तैयारी हो सके. अच्छा ये बताइएगा कि जब निसाब कोई तैयार करते हैं, सिलेबस आप तैयार करते हैं, तो तालीमी माहरीन तो जाहिर है उसमें शामिल होते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि कुछ हमारे बड़े जिसे कहना चाहिए माहरीन के नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं तालीम के शोबे से, उनको भी इस बारे में ये शिकायत रहती रही है कि तालीम के लिए जब हम प्रोफेशनल्स जो हैं या असातिज़ा हैं या तालीमी माहरीन हैं, वो चीज़ें बना के तो दे देते हैं, पॉलिसियां वज़ा भी कर देते हैं, लेकिन जब उनको हतमी शक्ल देने की वक्त आता है तो उस वक्त बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. ये बात किस हद तक दुरुस्त है?
अभी देखें, क्योंकि मैं बहुत रिसेंट इस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ, तो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और तरह की चीजों में तो इन्वॉल्व हो सकती है. जब मैं कहती हूँ जी मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करानी है, उसके बजट अप्रूवल चाहिए और मुझे इतने अरसे के अंदर अंदर करानी है, मेरे टाइमलाइंस ये हैं, इस इन इन बातों में हो सकती.
अच्छा, इंतजामिया मोड के अंदर
जो कंटेंट सिलेक्शन है ना
जी,
या जो करिकुलम प्लानिंग है, करिकुलम प्लानिंग एक्सपर्टीज मांगती है. और मैं जब भी इस एक्सरसाइज को मैंने देखा है या मैं उसका खुद हिस्सा बनी हूँ, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ग्रुप्स बकायदा तरतीब दिए जाते हैं. नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटीज भी हैं हायर एजुकेशन लेवल पे, उसमें भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकट्ठे किए जाते हैं. मतलब अगर फिजिक्स का करिकुलम बन रहा है तो फिजिक्स के ही एक्सपर्ट्स बैठेंगे, कोई और उसमें इंटरवीन कर ही नहीं सकता.
अच्छा,
तो ऐसा नहीं है कि करिकुलम प्लानिंग में कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है.
इंतजामिया मोड में हो सकती है,
मिस कर गए ना. वो थी आपकी बात कि साइंसेज में चेंजेस लाना, तो और बात है सोशल साइंसेज में. मैं आपको मजे की चीज ये बताती हूँ कि लेट्स एक्सेप्ट इट कि साइंस में तब्दीली लाना पाकिस्तान में आसान है.
अच्छा,
सोशल साइंस में तब्दीली लाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें सोशल नैरेटिव्स हैं, तो वो जो आपका डोमिनेंट नैरेटिव है ना, वो कोई बदलने को तैयार नहीं है.
सही, जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आए, वो माइंड सेट की बात करते आए, सारी बात करते हैं. अच्छा, आजकल हम बड़ी एक आखिरी मेरा सवाल है, हमारी सेगमेंट का वक्त भी खत्म, पता ही नहीं चला जल्दी जल्दी खत्म हो गया. तो वो ये थी कि सोशल मीडिया का वैसे तो इस्तेमाल पाकिस्तान में अब बहुत आम हो गया, उस हिसाब से हम उसको उतना तरक्की पजीर मुल्क नहीं कहते, बहुत सारे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ साथ चलता है इस मामले में. तो क्या ये नहीं सूरत की जा सकती कि सोशल मीडिया के जरिए जिसको ई लर्निंग कहा जाता है उसकी तरफ कोई तवज्जो हो सके?
यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इस वक्त मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाती रहती हूँ, और मैं करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ सेशन करती हूँ. यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत सारे टीचर्स सोशल मीडिया को एज अ मीडिया ऑफ एजुकेशन यूज कर रहे हैं.
अच्छा,
लेकिन जब आप नीचे जाएंगे सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी या प्री सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, और उसमें तो देयर इज अ ह्यूज हेजिटेशन एंड रेजिस्टेंस. अच्छा। हम बच्चे के हाथ में मोबाइल बर्दाश्त नहीं कर रहे अभी तक, तो ना कि हम उसको बकायदा अपनी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, तो वहां पर अभी बहुत जरूरत है इस माइंडसेट को बदलने की।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी डॉक्टर अफशा हुमा, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत जल्दी वक्त खत्म हो गया, मेरे पास सवाल और भी बहुत थे जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो आपसे बात भी हो रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली सेगमेंट का वक्त अब हुआ चाहता है, जिसके में हम बात करेंगे ग़िज़ा के बारे में, और इसी हवाले से हमारा साथ देंगी आयशा खालिद, जो कि माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसको माहिर ग़िज़ायत ही कहते हैं, और इसके साथ साथ उनका ताल्लुक पंजाब की फूड उसके साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी है, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। तो जैसा कि आप से बात, जब
इट्स ऑलवेज एन ऑनर कि आप लोग मुझे यूं मौका देते हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का।
थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी आज हम, जैसा कि आपसे बात भी हो रही थी, तो आज हम बात करेंगे उस हवाले से कि सेहत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, और जाहिर है कि जब भी कोई दिन मनाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि जिस मकसद के लिए दिन मनाया जा रहा है उसकी खसूसी चीजों को, उसकी बुनियादी बातों को सामने लाया जाए। तो अक्वामे मुत्तहदा के इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्याम के बाद 7 अप्रैल 1948 को सेहत का पहला आलमी दिन मनाया गया था। थीम बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल कुछ करती हूँ कि 2019 में ये दिन सेहत की मुकम्मल सहूलियात हर एक के लिए हर एक जगह के उनवान से मनाया जा रहा है, यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो जनाब, इसमें हकूमतें, बैन अल-अक़वामी इदारे, मकामी समाजी तंजीमें और फलाही इदारे अवामी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद करते हैं, और पाकिस्तान में भी वफाकी वजारत सेहत, महकमा सेहत के सूबाई दफातर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तिब्बी तंजीमें और NGOs खसूसी वॉक, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस समेत दीगर तकारीब को मुनक्किद करती हैं। तो तिब्बी माहरीन अपने मकाले भी पेश करते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा पस मंजर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आयशा हम बात कर रहे थे कि हम आज बात करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो जो बुनियादी सूरत है खुराक के हिसाब से, क्योंकि खुराक का मायार अक्सर जेरे बहस रहता है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं या शेख खुर्दनी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कि वो हमारी सेहत और जिस्म की नशवोनुमा के लिए कितनी मुफीद हैं, और या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें मुफीद होने की बजाय नुकसानदेह बना देती हैं। तो इस आज मेरा ख्याल था कि आपसे हम बात करें कि जब हम ये करते हैं बुनियादी सेहत की बात का ख्याल करते हुए, तो उसमें कुकिंग मेथड्स, यानी जब हम चीजें पकाते हैं तो वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे मैं सुनने वालों को, क्योंकि बाज़गत हम इतना पका देते हैं कि कहते हैं कि जो उसके ग़िज़ाई अंसर है वही ज़ाया हो जाते हैं,
ओवर कुक कर देते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, इसकी वर्ल्ड हेल्थ डे मेरे ख्याल में कि अगर हम सोचें तो रोज रोजाना हम खुराक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जिसमें जाहिर है हमारा पानी भी शामिल है, हमारा सारा जो फूड ग्रुप्स जिसमें हमारे फल आ जाती हैं, सब्जियां आ जाती हैं, हर चीज शामिल है। अगर आप देखें तो वहजत हम खुराक के बगैर शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और हर इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो खुराक के लिए कर रहा है। जो हमारा सर्वाइवल है बेसिकली, वो बेस हमारे ऑक्सीजन के बाद अगर करता है तो वो खुराक पे करता है। जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ डे अगर हम अदरवाइज देखें तो हर दिन ही हेल्थ का होना चाहिए, लेकिन अगर अक्वामे मुत्तहिदा के अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक स्लोगन कैरी करती हैं या स्लोगन को लेकर चलती हैं और एक रिमेम्बरेंस में वो चीज जब आती है, यू नो, टू कमेमोरेट या उसको मनाने के लिए, तो यकीनन उसमें जो एक लाजमी चीज आ जाती है वो आ जाती है कि उस पे एम्फेसिस देना, यानी उस पे जोर देना, उसके बारे में बात करना। अब ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जनरल हेल्थ की, जैसे आपको पता ही है पाकिस्तान का स्टैट्स जब हम निकालते हैं तो आपको पता है 44 to 45% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी वो ग्रोथ उनकी रेट रिटार्डेड है आइदर वे, या तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वेट फॉर एज उनका ठीक नहीं है, हाइट फॉर एज उनका ठीक नहीं है, या हाइट एंड वेट दोनों ही उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। ये हो गई स्टंटेड ग्रोथ। उसमें भी जाहिर है हमारी ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, यानी चिल्ड्रन आर फ्यूचर। अगर हम बच्चों को शुरू से ही, अगर हम खुद अवेयर होंगे, खुद हमें इस चीज का एहसास होगा कि एक चीज करने के क्या फवायद हैं या उसके क्या नुकसानात हैं, तो यकीनन हम एक बार दो बार करने के बाद उसे शायद कई लोग जो बहुत कंसिस्टेंट हो जाते हैं या अपनी आदत में बहुत पुख्ता हो जाते हैं वो उनको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आपको पता है बेहतर एक बार इंसान के जहन में ये चीज क्लिक जरूर करती है, यानी वो आपको अलार्म जरूर करती है कि ये देखिए ये चीज ठीक नहीं है, जिसमें अभी आपने कुकवेयर की भी बात की या सेफ्टी की बात करें, सफाई सुथराई की बात करें, सफाई सुथराई में भी मतलब जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं सफाई सुथराई और मुकम्मल न्यूट्रिशनली एडिक्वेट रिजा, यानी तमाम गजाई अज्जा से भरपूर हमें जो गजा मिलनी चाहिए उसकी जब हम बात करते हैं लोगों को अच्छा। मुकम्मल गजा तो मतलब एक बहुत दूर की बात है, लोगों को बेसिक अपनी नेसेसिटीज के बारे में पता।
अच्छा, यहीं पे मैं वो सवाल भी कर दूं अपना बीच में कि एक नॉर्मल इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए, जो मुनासिब गिजा की आप बात कर रही हैं, कितनी मिकदार कितनी चीज खानी चाहिए पूरे दिन के अंदर कि उसको वो, ये हमारे अपने माहौल के मुताबिक भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं किया जा सकता, उस हिसाब से किस तरह से आप बताएंगी कि एक मुनासिब और मुतनासिब गिजा लोग खा सकें।
अच्छा, मजे की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो अच्छी गिजा है वो सबकी सब महंगी है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और मैं मजे की बात आपको एक और बताती हूँ कि वेन एवर बीइंग अ डाइटिशियन या मतलब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट यानी माहिरे गिजायात के तौर पे जब मैं कोई डाइट प्लान बना के देती हूँ किसी भी पेशेंट को या कोई भी इंसान जब मेरे पास चाहे वो वेट कम करने के लिए आता है या कोई उसको डायबिटीज का मसला है या उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मैं हमेशा ये चीज देखती हूँ कि क्या चीज हमारी पहुंच में है और जो हमें इजीली मतलब एक्सेसिबल क्या चीज है। और इस बार हमारा स्लोगन भी यही है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे की जब स्लोगन की बात करते हैं स्लोगन भी यही है कि एक्सेसिबल क्या चीज है, मतलब आसानी से हमें क्या चीज मुहैया की जा सकती है, हम लोगों को दे सकते हैं या जो मार्केट में अवेलेबल है और जो प्राइस प्राइस इफेक्टिव भी हो, यू नो प्राइस इफेक्टिव से मुराद ये कि उसमें बहुत ज्यादा महंगी चीजें, महंगी चीज जरूरी नहीं है कि जी आप सिर्फ मछली, जैसे मिसाल के तौर पर मछली बेशक एक बहुत भरपूर गिजाइयत से भरी हुई चीज है, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है कि उसमें आपको हर तरह का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आप उसकी देखें तो उसमें बेशुमार अफादियत है मछली की। लेकिन अगेन हमारे यहाँ पे सी फूड सारा ही तकरीबन महंगा है, ठीक है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर एक चीज आपकी एक्सेस में नहीं है तो हम शायद अपनी जो कैलोरीज की अभी जिस तरह आपने बात की वो हम पूरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा, बीएमआई एक टर्म होती है, बीएमआई हम निकालते हैं जब डाइट प्लान बनाते हैं, अब उसमें वेरी करता है यानी डिपेंड करता है कि किसी का बीएमआई के हिसाब से उसको कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है या जो इनटेक आपकी आपको चाहिए होती है फलों में सब्जियों में गोश्त और ये सब ग्रुप यानी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिलाकर, वो तकरीबन 1700 से 1800 कैलोरीज चाहिए
आम नॉर्मल इंसान के लिए,
आम नॉर्मल। लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है उसके बाद के उस इंसान की जो फिजिकल एक्टिविटी है बहजर वो कितनी है, ठीक है, यानी एक इंसान बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है बट ऑन द अदर हैंड वही इंसान या कोई और इंसान इतना एक्टिव नहीं है तो उसकी कैलोरीज यकीनन हम कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है वो खा भी रहा है उतना ही वो कंज्यूम भी कर रहा है, यानी वो उसकी कैलोरीज बर्न भी हो रही है, यानी कंजम्पशन के बाद उसकी कैलोरीज बर्न भी हो रही है, तो उसमें जाहिर है उसकी कैलोरीज 2500 से 3000 तक भी चली जाएंगी। और वो एक्टिविटी फैक्टर होता है जो जब हम डाइट प्लान बनाते हैं उसमें एक्टिविटी फैक्टर लगाते हैं, और एक आम इंसान का एक्टिविटी फैक्टर जाहिर है वो क्योंकि काम नहीं कर रहा वो बहुत मॉडरेटली एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उसमें कैलोरीज यकीनन।
अच्छा, यहाँ पे मुझे एक
बहुत ज्यादा तफसील
जी, मुझे एक सवाल यहाँ पे हमारे सुनने वालों के लिए और खुद मेरी भी रहनुमाई के लिए, ये फरमाइएगा कि जब हम कैलोरीज लेने की कोशिश करते हैं तो बाज़ुकात बाज़ चीजें ऐसी हैं जैसे कि शक्कर है, नशास्ता है, इस तरह की चीजों से कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर उस तरह की चीजों से हम कैलोरीज लें तो क्या वो हमारे मोटापे की तरफ नहीं हमें ले जाएंगी?
अच्छा देखें, मैं अब उसमें भी चीज रफली एक आइडिया दे देती हूँ कि जब हम डाइट प्लान बनाते हैं या अगर हम तसव्वुर करते हैं कि एक मुनासिब मिकदार में हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स कितने लेने चाहिए, तो जब हम डाइट प्लान भी बनाते हैं और वैसे भी तकरीबन 50-55% जो हिस्सा है हमें कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। 50-55% का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ग्रुप आ जाता है स्टार्चेस का, फाइबर का, सिंपल शुगर्स का और ये सब कुछ हमें कहाँ कहाँ से मिलती है. अच्छा, फिर हमारे पास जो 30 से 35, 35 से 40% हिस्सा हमें चाहिए फैट्स में से, ठीक है, और प्रोटीन हमें मिनिमम अमाउंट में. मिनिमम अमाउंट से मुराद अब ये नहीं है कि उसमें भी हमें 20% से 25%, मतलब 18 से ऑनवर्ड्स 25% प्रोटीन भी चाहिए होता. अब हमारे यहाँ जाहिर है कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर अंडा खा रहे हैं तो सिर्फ अंडा ही खा रहे हैं, यानी जिस तरह से जिम करने वाले लोगों को भी कहा जाता है कि जब 6-6 अंडे की सफेदी दे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो बैलेंस उस तरह से नहीं हो पा रहा होता. वो जिम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे होते. लेकिन 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट जरूरी इसलिए है कि हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है. जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हमारा दिमाग क्या करता है कि जो स्टोर्ड फॉर्म होती है, ग्लाइकोजन जिसे बोलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद दिमाग को तो फौरी, क्योंकि दिमाग हमारा सबसे ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी इस्तेमाल करता है, ठीक है. उसके बाद वो तो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वी आर लेफ्ट विद नो एनर्जी, हमारे पास एनर्जी नहीं रहती. तो उस सूरत में फिर हमें मसला होता है. उसमें कई लोगों का ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है, कई लोगों को पैल्पिटेशन होने लग जाती हैं. तो अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात करते हैं तो जो नशास्ता है, जैसे भी स्टार्चेस की बात की, फल से, सब्जी से, खासतौर पर जो छिलके वाली सब्जियां हैं उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में हमारे पास फाइबर होता है. और फाइबर और स्टार्चेस मुख्तलिफ इकसाम है कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज की. यानी स्टार्चेस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे वीट है, इसमें हमारे पास ये सारी स्टार्चेस सब्जियों में पाई जाती है, और जो फाइबर है वो वीट में पाया जाता है. और ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है. प्रोटीन हमारा गोश्त में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है. यानी हमारा 18 से जो 25% प्रोटीन है हम इनसे पूरा.
अच्छा, आशा, यहाँ पर हम ये यहाँ पर बात, क्योंकि हमारे पास आई विश के ज्यादा वक्त होता और हम ज्यादा बात कर सकते. बाज़ात जब हम ये खाना खाते हैं, चीजें खाते हैं, और आपने अभी वो जहर दिमाग की तरफ भी कहा कि उसको जरूरत होती है, तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो कम्फर्ट फूड के तौर पर हम खाते हैं. तो जैसे कि डिप्रेशन को रोकने के लिए बाज़ात हमारे ऊपर कुछ मायूसी होती है, तो हमने देखा, ये ट्रेंड देखा है, ज़हनी रुझान देखा है कि खाने की तरफ बढ़ने जाते हैं. उस सूरत में क्या करने की जरूरत होती है, कौन से ऐसे खाने हैं?
अच्छा, अमूमन ये होता है कि ज्यादातर लोगों का मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है. मैंने जिन लोगों की रिसर्चेस के दौरान भी और स्टडीज भी यही कहती है कि डिप्रेशन में आया के अब डिपेंड करता है, या तो लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं.
जी.
मतलब उनमें एक्सेसिव ईटिंग की आदत और इरेगुलर ईटिंग, और जो बिंज ईटिंग एक टर्म होती है हमारी टर्म में, ठीक है, न्यूट्रिशन साइंसेज में, बिंज ईटिंग उनमें बढ़ जाती है. उसमें कम्फर्ट फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो मछली एक बहुत बेहतरीन फूड है दिमाग के लिए. इसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस की हम जरूर जिक्र करेंगे. जब वर्ल्ड हेल्थ डे की बात होती है तो यकीनन कार्बोनेटेड और फिजी ड्रिंक्स की जब हम बात करें तो उसमें वो हमारी हेल्थ के लिए अदरवाइज भी है, और हमारी जो ब्रेन हेल्थ है उसके लिए भी नुकसानदेह. उनका इस्तेमाल बिल्कुल आप छोड़ दें, अदरवाइज भी. और
अच्छा, इसमें भी एक और छोटी सी आप वजाहत करती चले, इसमें भी छोटी सी वजाहत करती चले कि ये जो कार्बोनेटेड वाटर्स या कोलाज या इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं उनमें जीरो शुगर और जीरो कैलोरी का बड़ा एहतमाम किया जाता है, लेकिन कई रिसर्च ये भी बताती हैं कि वो तो और भी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं. इस बारे में भी कुछ बताइए, ये हमारा आखिरी पॉइंट भी आज का.
अच्छा, ये बस सांप और बिच्छू का फर्क है कि अगर आपको कैलोरीज उसमें नहीं मिल रही, ठीक है, आपकी शुगर तो बैलेंस रहेगी, लेकिन उसके अलावा आपका जो हड्डियों का मसला है, जैसे जो कार्बोनेटेड बेवरेज उसमें और कुछ ना सही और बड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि हेल्थ के लिए नुकसान दें. उसमें प्रोसेसिंग है, प्रोसेस्ड है ना जाहिर अल्टीमेटली, और प्रोसेस्ड फूड को तो हम वैसे ही अवॉइड करने के लिए बोलते हैं.
जी.
तो एम्प्टी कैलोरीज आपको दे रहा है वो अदरवाइज भी, चाहे वो जीरो कैलोरीज तो हैं, लेकिन उसमें ऐसी और भी चीजें हैं और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी हड्डियों के लिए शायद नुकसान दें, क्योंकि अल्टीमेटली साप्स द कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स. आपकी हड्डियों में से कैल्शियम खींचता है, ठीक है, निकालता है, तो वो हर लिहाज से खराब है. और एंड पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कुकवेयर की जब बात होती है, ठीक है,
जी, जिसे हमने शुरू किया था.
जी बिल्कुल. उसमें ये है कि जो डेंजरस कुकवेयर है, जैसे स्टेनलेस स्टील की बात होती है, उसमें कुछ चीजें हैं जो कि खाने के साथ मिक्स होके, हम जब स्टेनलेस स्टील में बनाते हैं, ठीक है, वो खाने के साथ मिक्स होके कैंसरस हो सकती हैं खुदा ना खास्ता, और हमारे अंदर जाके खाने के साथ मिक्स होके उसका गलत इफेक्ट हो सकता है. जिसमें अब रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जी टाइप एक हद तक अगर आप कुक करें तो वो स्टील नहीं उतरता और वो साथ खाने के मिक्स नहीं होता. इसके अलावा टाइटेनियम آپ بازار سے پتا کر سکتے ہیں, جہاں سے بھی آپ اپنی یو نو کراکری خریدتے ہیں اور جو پتیلے شتیلے پین وغیرہ, اس میں ٹائٹینیم کک ویئر سب سے بیسٹ چوائس ہے. اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو ٹائٹینیم سے بنا ہوا
جو ہے
وہ آپ استعمال کریں. یہ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بولوں گی کیونکہ کوکنگ بہت امپورٹنٹ اور اس کے میتھڈز بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی دن ہم اس پہ بھی انشاءاللہ
بھی بات کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ جب پھر ہم خوراک کو بعد میں جو بچ جاتا ہے کھانا, اس کو ہم کس طرح محفوظ کرتے ہیں, بات ہماری لگے گی.
بالکل
اس کے بارے میں,
کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو آج یہ شاید نہیں ہو پائے گا.
بہت بہت شکریہ آشا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے, لیکن ہم نے پروگرام کے آغاز ہی میں آپ سے کہا تھا کہ جیسے آپ اسد حسن کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں اسی انداز میں ہم یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیں گے. اب آخری ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے, اور جس میں ہم آپ کے لیے اسپورٹس کا پروگرام لے کر آتے ہیں, اور آج یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں فائزہ بخاری. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں اسپورٹس کے ساتھ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور جی ہاں, اب جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا سپورٹس کا پروگرام لیے, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں فائزہ بخاری. جی فائزہ
جی, آپ سب جانتے ہیں کہ اصل جو پروگرام کیا کرتے ہیں اس میں آخری 15 منٹ ہم وقت کرتے ہیں اسپورٹس کے لیے, اور یقیناً بات ہو اسپورٹس کی تو پھر کرکٹ کی بات کیسے ہو سکتا ہے کرکٹ کی بات نہ ہو. اور آج کا موضوع ہے بہت دلچسپ, جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیر بحث ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے کرکٹ حلقوں میں بھی اسے بہت بات ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں جو قومی ٹیم کے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کیا جائے گا, وہ کون کون سے ہوں گے. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا چلیں کہ 14 اپریل کو لاہور کی جو ہے اکیڈمی میں, وہاں پہ بلایا جائے گا 23 probable یعنی کہ ممکنہ کھلاڑیوں, ان کو طلب کیا جاتا ہے. پھر ان کے ٹرائل ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, فٹنس ٹیسٹ اسے کہا جاتا ہے. یہ فٹنس ٹیسٹ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور کون سے کھلاڑی جو ہیں انگلینڈ میں, چونکہ ورلڈ کپ ہونا ہے 30 مئی سے, وہاں کی پچز کے لحاظ سے کون سے کھلاڑیوں کو شامل کیا جانا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے, یہ آپ جانتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں. آج ہم نے جنہیں گفتگو کے لیے دعوت دی ہے, انہیں ہم پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں, نام ہے ان کا ڈاکٹر کاشف انصاری, گلوبل ایڈوائزر ہیں پشاور زلمی کے, اس کے علاوہ کرکٹ کمنٹیٹر ہیں, کرکٹ پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. ہیلو کاشف صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ جو ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے 30 مئی کو انگلینڈ میں, اس کے لیے 23 ممکنہ جو کھلاڑی ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فٹنس کے لیے طلب کیا ہے. ان یہ ایکچوئل جو ہوتی ہے ٹرائل, یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے فٹنس, یہ ہے کیا؟ کیونکہ قومی جو بیٹنگ کوچ ہیں گرانٹ فلاورو نے کہا ہے کہ بہت اسٹرکٹ اس کا بینچ مارک ہے, اور ہر کھلاڑی کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے 17.4 پوائنٹس انہیں لینا ہوں گے. یہ ایکچولی ٹیسٹ ہوتا کیا ہے, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں.
جی بالکل, بہت شکریہ آپ نے وائس آف امریکہ پہ ایک دفعہ پھر مجھے دعوت دی. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ فٹنس ٹیسٹ ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ICC کے بنائے ہوئے کچھ فارمولاز ہیں اور کچھ ان کے بینچ مارکس ہیں. مثال کے طور پر کہ آپ کا باڈی ویٹ, باڈی فیٹ, آپ کی ایکسرسائز ٹالرنس, آپ کی رننگ ٹالرنس, آپ کے مسل ماس کے حساب سے, اور آپ کی جو انڈیورنس ہے, جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ انڈیورنس کتنی ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کو ہم یو یو ٹیسٹ کہتے ہیں, جس کے اندر جسم کے تقریباً 18 سے 22 مسلس کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رننگ بھی کرائی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کے جسم کے وہ حصے کے جو باقاعدہ طور پر ایکسرسائز کے دوران استعمال ہوتے ہیں, جیسے بائسپ مسل ہیں, ٹرائسپ مسل ہیں, کوڈریسپ مسل ہیں, کاف مسلز ہیں, ان سب کی سائز اور ان کی میجرمنٹس اور ان کی اسٹرینتھ کو باڈی فیٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے, कि क्या वो 50 ओवर के लिए या 20 ओवर के लिए सस्टेन कर सकते हैं या नहीं।
अच्छा अच्छा, इतलात ये हैं कि जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक और कोच मिकी आर्थर, वो बेसिकली वर्ल्ड कप के लिए जो 15 खिलाड़ी उन्होंने मुंतखब करने, उनके नामों को आपस में मुशावरत से हतमी शक्ल दे चुके हैं, और इसमें जो है उन्होंने कप्तान सरफराज अहमद को शामिल नहीं किया, उनकी राय को जो है वो शामिल नहीं किया। तो क्या ये टेस्ट जो है ये एक रस्मी कार्रवाई होती है सिर्फ, या हकीकतन इसकी बुनियाद पर ही 15 खिलाड़ी जो है उनका इंतखाब किया जाएगा?
नहीं देखिए, 15 खिलाड़ी, उन 23 में से 15 खिलाड़ी मुंतखब किए गए हैं, कर चुके हैं, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन उनकी फिटनेस पिछले 2 से 4 हफ्ते बल्कि 6 हफ्ते के दौरान उनको मुख्तलिफ वक्तों में आजमाया गया है, क्रिकेट खिला करके, PSL खिला के, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खिला के, और उन पर नजर रखी गई है, और इस वजह से ये कहना उनके लिए बड़ा आसान है कि कौन से 15 खिलाड़ी होंगे, और उनको उम्मीद है कि वो फिटनेस टेस्ट भी पास कर लेंगे। और आपने ये बड़ी अहम बात की है कि सरफराज की मशावरत के बगैर 15 खिलाड़ी उन्होंने चुन लिए, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और ये इस बात की अगवाजी करता है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान कितना कमजोर है, और उसको किस तरह पपेट के तौर पर मिकी आर्थर और इंजमामुल हक पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा जी, ये साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी अपना रिसेंट ये बयान दिया है कि जो 10 साल में कौमी क्रिकेट टीम है उसके साथ नारवा सलूक किया गया, बिरयानियां खिला के आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरह से बोर्ड पर तंज करते हुए कहा, जो अच्छा खेले उसकी प्लेट में आप बोटी डाल देते हैं, जो अच्छा ना खेले उसे सादा। तो ये क्या है, ये कोई इम्तियाजी सलूक क्या हो रहा है, उन्होंने किस तरफ इशारा किया वसीम अकरम ने?
बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है। मिकी आर्थर साहब एक डिक्टेटर है, और उसके साथ साथ इंजमामुल हक साहब उनसे भी 4 हाथ आगे 120 टेस्ट मैच खेले हुए इंजमामुल हक साहब, तो समझते हैं कि मैंने 120 टेस्ट खेले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चीफ सिलेक्टर हूँ। इमरान खान साहब के आने से पहले भी वो अपने आप को मजबूत तसव्वुर करते थे, और इमरान खान साहब के आने के बाद जब वो तो मजीद अपने आप को मुस्तहकम समझते हैं कि मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता मुझसे। उन्होंने जिस तरह का रवैया पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रखा है, उसको सौतेली माँ का सलूक भी कह दे तो बहुत अच्छा होगा।
अच्छा।
और जिस तरह से मामला उन्होंने किए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले जा चुके हैं।
अच्छा ये सिचुएशन है। अच्छा ये मुझे बताइए, ये एक और बहस जो है वो भी गर्म है, वो ये है कि इन 23 जो मुमकिन खिलाड़ी हैं जिन्हें तलब किया गया है उसमें उमर अकमल का नाम शामिल नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो डिजर्व करते हैं?
उमर अकमल ने PSL में परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उमर अकमल का नाम इसलिए शामिल नहीं कि 5 मैचों में उमर अकमल को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मौका दिया गया, 48 उन्होंने मैक्सिमम स्कोर किया, और उसके बाद कोई खातिर खा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। और इसके साथ साथ अहमद शहजाद ने बेहतरीन PSL खेला, 5 से 6 मैचों में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई, फिटनेस टेस्ट भी पास किए, पिछले 1.5 साल से काफी वो नजरों में हैं पूरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, लेकिन PSL में उन्होंने अपने रवैये को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था। उम्मीद की जा रही थी कि उमर अकमल को भी शामिल किया जाएगा और अहमद शहजाद को भी, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि उमर अकमल ने 5 मैचों में कारकर्दगी नहीं दिखाई, इस वजह से वो अपना चीफ सिलेक्टर और मिकी आर्थर का दिल जीतने में नाकाम रहे। जहां तक सवाल है अहमद शहजाद का, क्योंकि उन पर भी बहुत सवाल किए जा रहे हैं, उनको तो प्रॉबेबल 23 में भी शामिल ना किया गया, और उससे पहले उनको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका रवैया मिकी आर्थर को बहुत अरसे से नापसंद था, और उन्होंने इंजमामुल हक को इस बात पर तैयार कर लिया कि इस लड़के का कैरियर और क्रिकेट को मेरी मौजूदगी में कम अज कम खत्म हो जाना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर काशिफ, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे साथ अशर जैदी भी मौजूद हैं, उनको भी हमने दावत दी है कि वो भी अपने जो है 2 सेंट्स हमें दें इस सिलेक्शन के हवाले से। अशर जैदी बहुत से चैनल्स के साथ मुंसलिक रहे हैं, क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, हम उन्हें भी दावत देना चाहते हैं शो में। जी अशर जैदी साहब, अशर क्या आप सुन सकते हैं मुझे?
बिल्कुल आवाज आ रही है, और आपके तमाम आपको और तमाम सामईन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
जी पहुंच गया।
वालेकुम सलाम।
जी अच्छा अशर, ये बताइए कि ये जो 15 खिलाड़ी जो हैं जिनका इंतखाब किया जाएगा, आपके ख्याल से जो इंग्लैंड की पिचेस हैं उसके लिहाज से, वो बॉलिंग पिचेस हैं या वो बैटिंग पिचेस हैं, उस लिहाज से कौन से 15 खिलाड़ी मस्ट होने चाहिए आपके नजर में?
देखिए पहले तो हम इंग्लैंड की कंडीशंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा और जो सीनियर से और जो चीफ सिलेक्टर से हम बात होती रही है। अमूमन इंग्लैंड की विकेट्स के बारे में कहा जाता है कि जी बड़ी सीमिंग होती हैं और बॉल बहुत घूमता है, बैट्समैन को बड़ा दर्द सर होता है वहां पर, लेकिन यूजली जब आईसीसी के इवेंट होते हैं तो विकेट्स फ्लैट यूजली बनाई जाती हैं। अब ये अर्ली ऑन इन द सीजन हो रहा है, इसमें क्या पोजीशन होती है, किस तरह होता है, तो ये तो देखना चाहेगा। ये कहना कि जी कौन से लड़के होंगे या नहीं, ये तो आप कहिए कि बहुत ही अब इस वक्त मुश्किल सवाल पूछ रही है कि किसको दिया जाता है। ऑब्वियसली अभी दो चंद दिनों बाद जो है फिटनेस टेस्ट होने वाला है और वो सबसे मिकी आर्थर भी कह चुके हैं कि मैं फिटनेस पे तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, जो लड़का 200% जो फिट होगा उसको भी सिलेक्ट किया जाएगा। और अभी आपके इल्म में भी है कि पिंडी के अंदर पाकिस्तान कप चल रहा है, वहां भी लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन सिलेक्ट हो सकता है कौन नहीं, इस पे तो बहुत बातें होंगी। हाँ, इस वक्त जो हॉट बेड गुफ्तगु चल रही है वो मोहम्मद आमिर के ऊपर चल रही है, और अगर आप अवामी राय देखें तो बिल्कुल 50% में स्प्लिट है। एक तरफ कहा जाता है कि मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद वो किसी मैच में दो विकेट भी नहीं ले सके हैं, अब तक उन्होंने तकरीबन 14 के करीब वनडे मैचेस खेले और कोई एक मैच ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने दो विकेट ली हों। तो चीफ सेलेक्टर और मिकी आर्थर के दरमियान एक बहस चल रही है कि ठीक है जी ये एक सीनियर प्लेयर है, अभी नहीं चल रहा, लेकिन ये क्रंच मैचेस में चल सकेगा, क्योंकि ध्यान में रखिए इस फॉर्मेट में आपको 10 मैचेस तो लाजमी खेलने हैं और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करने के लिए उनमें से 7 आपको जीतने हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सवाल निशान है। बाकी तो अगर हम देखें और एक दिन एक दो दिन और रुक जाए तो कब पेश हमें पता है कि कौन से लड़के इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं।
अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी उमर अकमल जो है 23 जो मुमकिना खिलाड़ी थे उसमें उनका नाम शामिल नहीं था, आपकी इस पर क्या राय है?
देखिए मैं ये कहूंगा कि उमर अकमल ने अपना चांस जो है वो खुद गवाया है।
अच्छा।
और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पीएसएल में एक तो पीएसएल से पहले उनका वेट बहुत बढ़ गया था और आपको हमें पता है कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस पर कितनी तवज्जो है, तो उन्होंने एक नया फिटनेस ट्रेनर लिया, अपना वेट बहुत कम किया, पीएसएल में आके उन्होंने माजी के अपने जबरदस्त खेल की झलकियां जो है वो जरूर दिखाई उसकी बेस पे। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि T20 वनडे का नियम बदल नहीं हो सकता, उनको फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में मौका दिया गया और ऐसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कि अपनी बी साइड की टीम लेके आई थी और विकेट जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी, वहां पर अफसोस ही हुआ कि जहां पर रिजवान ने दो सेंचुरियां बना ली, हारिस सुहेल ने दो सेंचुरियां बना ली, उसमें उमर अकमल ने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी विकेट गिनवाई, खासतौर पर तीसरा वनडे जब 40 बॉलों पे 40 रन रह गए थे और उमर अकमल को बेहतरीन मौका था कि वो मैच फिनिश करते, वहां भी उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर जो है वो अपनी विकेट गवा दी और पाकिस्तान सीरीज भी जो है उसके हाथ से निकल गई। तो ये जो हरकतें उमर अकमल की रही हैं उसके बाद तो ये फाइनल डिसीजन हो गया था कि जी इनको नहीं लिया जाएगा। ऑल दो की जो पाकिस्तान कप हुआ उसमें उन्होंने 140 रन की इनिंग्स भी खेली लेकिन उसको खाते में नहीं लाया गया। यही कुछ अहमद शहजाद के साथ हुआ कि उनका भी एटीट्यूड प्रॉब्लम सिलेक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, उमर अकमल का भी आपने सुना होगा कि वो आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक नाइट क्लब में चले गए, तो वहां उन्होंने वीडियोस बना के भेजी, सोशल मीडिया पर डाली, उन्होंने परमिशन ली थी। यही कुछ अहमद शहजाद ने किया कि पाकिस्तान कप के जो अर्ली मैचेस थे उन्होंने कुछ एम्पायरों से बदतमीजी की, उन पर मैच फीस का फाइन भी लग गया। तो जहां तक इन दोनों के टैलेंट की बात है तो फायदा कोई दो राय नहीं कि बहुत कम दुनिया में ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो इन दोनों के टैलेंट को मैच कर सके। दोनों हार्ड हिटर्स भी हैं, दोनों ने माजी में परफॉर्म भी किया है, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम और वक्त पे ना परफॉर्म करना, ये वो दो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये मिकी आर्थर की नजरों से उतर गए।
अच्छा, सही। अब मैं डॉक्टर काशिफ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शुएब मलिक की टीम में शमूलियत के हवाले से आप क्या राय देना चाहेंगे?
देखिए बीबी, मसला ये कि हमारे पास खिलाड़ी ही नहीं है, तो अब उसकी वजह से शोएब मलिक भी वो कहते हैं कि जी लेना पड़ेगा, क्या करें, बाय डिफॉल्ट होंगे। शोएब मलिक ने आखिरी मैच हमें कब जितवाया था, शोएब मलिक ने आखिरी सेंचुरी कब बनाई थी, किसी को याद भी नहीं होगा। तो अब क्या करें जब लड़के ही नहीं प्रोड्यूस किए 3 साल से, ये दोनों हमारे जो चैंपियन को बैठे हुए हैं चीफ सिलेक्टर और आपके आपके कोच, इन्होंने किसी लड़के पे काम ही नहीं किया, उठा उठा के लड़कों को बाहर ही फेंकते रहे कि फला का एटीट्यूड खराब है, फला का वजन ज्यादा है, फला की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। अरे तो भाई आप पैसे किस बात के लेते हो, आप किस बात की तनख्वाह लेते हो, आप ठीक कराओ ना। दुनिया में सबसे खराब एटीट्यूड जो था है, बल्कि मैं कहता हूँ है, वो विराट कोहली का है। लेकिन आज दुनिया का नंबर एक बैट्समैन है क्योंकि उसके ऊपर बोर्ड ने काम किया, उसके टैलेंट को कैश कराया, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज कराई और आज दुनिया का सबसे खतरनाक बैट्समैन है वो। हमारे यहाँ जरा सा कोई प्रॉब्लम हो ये अपने सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, उठा के लड़के को बाहर फेंक देते और कहते हम क्या करें, उसने ये बदतमीजी की, उसने वो बदतमीजी की।
ठीक है,
मलिक का जहाँ तक सवाल है भाई, मेरी प्यारी बहन, शोएब मलिक के अलावा कोई है ही नहीं,
सही,
तीन साल में लड़का ही कोई नहीं तो किसको खिलाए फिर, मैं चला जाऊँ।
ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ अंसारी आपका और अरशद जैदी आपका कि आपने इस हमारे सेगमेंट में चार चांद लगा दिए। सामीन को बताया चले आप सुन रहे थे हमारा तवील दौरानिया का प्रोग्राम आपकी दुनिया 972 किलोहर्ट्ज पे, हमारे वीओए ऐप पर भी आप सुनते हैं, हमारे वेबसाइट पे सुनते हैं। हमारी एडिटर और आज की होस्ट थीम बहजत जिलानी, हमारे प्रोड्यूसर असफर इमाम, और आपसे रुख्सत लेने का वक्त आन पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते और इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 से 9 बजे तक। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।